ಭಕ್ತಸಂಗ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಭಜಸ್ವ ತ್ವಂ ತಬ್ಜನಾಭಾಂಗ್ರಿ ಸರೋಜಕೋಶ ದುರ್ಗಾಶ್ರಿತೋ ನಿರ್ಜಿತ ಷಟ್ ಸಪತ್ನಃ ಭುಂಕ್ಷೇಹ ಭೋಗಾನ್ ಪುರುಷಾತಿದಿಷ್ಟಾ ವಿಮುಕ್ತ ಸಂಗ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಭಜಸ್ವ. ಪುರುಷಾತಿದಿಷ್ಟಾನ್ ವಿಮುಕ್ತ ಸಂಗ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಭಜಸ್ವ. ದುರ್ಗಾಶಿತೋ ನಿರ್ಜಿತ ಷಟ್ ಸಪತ್ನ ಪುಂಸೇಹ ಭೋಗಾನ್ ಪುರುಷಾತಿದಿಷ್ಟಾನ್ ವಿಮುಕ್ತ ಸಂಘ ಪ್ರಕೃತಿ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಅರ್ಥ ಅವರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶ್ರೀಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ತ್ವಂ ತುಮ್ ಸ್ವಯಂ ತೂ ತಬ್ ಅಬ್ಜನಾಭ ಜಿನ್ಕಿ ನಾಭಿ ಕಮಲ್ ಪುಷ್ಕೆ ಸದೃಶ್ಯ ಹೇ ಐಸೆ ಭಗವಾನ್ ಅಂಘ್ರಿ ಚರಣ್ ಸರೋಜ್ ಕಮಲ ಕೋಶ್ ಮೂಹ ಸಂಪುಟ್ ದುರ್ಗ ಕಿಲ್ಲಾ ಆಶ್ರಿತ ಶರಣಾಗತ ನಿರ್ಜಿತ ವಿಜಿತ ಷಟ್ ಸಪತ್ನ ಛ ಶತ್ರು ಮನ್ ತಥಾ ಅನ್ಯ ಪಾಂಚ ಇಂದ್ರಿಯ ಭುಂಕ್ಷ್ವ ಭೋಕರೋ ಇಹ ಜಗತ್ ಮೇ ಭೋಗಾನ್ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುವೇ ಪುರುಷ ಪರಂ ಪುರುಷ ದ್ವಾರಾ ಅತಿದಿಷ್ಟಾನ್ ವಿಶೇಷತೆಯ ಆದೇಶಿತ ವಿಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಹುವ ಸಂಗ ಭೌತಿಕ ಲಗಾವ್ ಸೆ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಭಜಸ್ವ ಭೋಗ ಕರೋ. ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನೇ ಆಗೇ ಕಹಾ ಹೇ ಪ್ರಿಯವತ್ ಕಮಲ್ ನಾಭ ಈಶ್ವರ ಕೆ ಚರಣ ಕಮಲ್ ಕೆ ಕೋಶ ಮೇ ಶರಣ ಲೇಕರ್ ಛೋ ಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರಿಯ ಪರ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರೋ. ತುಮ್ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಭೋಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರೋ ಕ್ಯೂಕಿ ಭಗವಾನ್ ನೇ ತುಮೇ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಸೆ ಏಸಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಜ್ಞಾ ದಿ ಹೇ. ಇಸ್ ತರಹ ತುಮ್ ಭೌತಿಕ ಸಂಸರ್ಗ ಸೆ ಮುಕ್ತ ಹೋ ಸಕೋಗೆ ಔರ್ ಅಪ್ನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ರಹತೆ ಹುಯೇ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಆಜ್ಞಾಯೆ ಪೂರಿ ಕರ ಸಕೋಗೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ इस भौतिक जगत में तीन प्रकार के प्राणी हैं जो अत्यधिक इंद्रिय भोग करने का प्रयास करते हैं कर्मी कहलाते हैं. इनके ऊपर ज्ञानी है जो इंद्रियों की वासनाओं को रोकने का यत्न करते हैं और इनसे भी ऊपर योगी है जिन्होंने पहले ही इंद्रियों को जीत लिया है किंतु इनमें से कोई भी दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं है. केवल भक्त जो ऊपर उद्धृत तीनों में से किसी प्रकार के नहीं है दिव्य होते हैं. जैसा कि भगवद गीता में व्याख्या की गई है माम च यो विचारे न भक्ति योगे न सेवते स गुणान समित्ते त्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते. जो पूर्ण रूप में मेरी भक्ति में लगा है और किसी भी स्थिति में गिरता नहीं वह अविलंब त्रिगुणमयी माया को पार करके ब्रह्मा स्तर पर पहुंच जाता है. यहाँ ब्रह्मा जी प्रियव्रत को गृहस्थ जीवन नहीं अपितु भगवान के चरण कमलों के दुर्ग के भीतर अब जना मांगरी नाभांगरी सरोज शरण लेने का उपदेश दे रहे. जब भंवरा कमल की कली के छेद में घुसकर मधुपान करता है तो वह कमल की पंखुड़ियों से भली भांति रक्षित होता है, उसे सूर्य प्रकाश तथा अन्य बाहरी कारण प्रभावित नहीं कर पाते। इसी प्रकार भगवान के चरण कमलों में शरण लेने वाले को भय नहीं सताते। इसलिए श्रीमद् भागवत 10.14.58 में कहा गया है, समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुदीर्वस्य पदम परम पदम 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 यद्विपदाम न तेषाम। जिसने भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण की है उसके लिए प्रत्येक वस्तु सरल हो जाती है, यहाँ तक कि इस भवसागर भवाम्बुदि का संत रन गोखुर वत्सपदम के समान सरल हो जाता है। ऐसे भक्त के लिए उस स्थान में जहाँ प्रतिदिन पर बाधा हो रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारा वास्तविक कर्तव्य भगवान की आज्ञा का पालन करना है। यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ है तो हमें चाहे स्वर्ग में रहे या नरक में सर्वत्र सुरक्षित है। यहाँ पर प्रकृतिम भजस्व ये शब्द अत्यंत सार्थक है। प्रकृतिम का अर्थ है कि किसी की स्वाभाविक स्थिति, प्रत्येक जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है कि वह भगवान का चिरंतन दास है। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को उपदेश दिया, अपनी मूल स्थिति में भगवान के चिरंतन दास के रूप में बने रहो। यदि तुम उनकी आज्ञा का पालन करते हो तो भौतिक भोग भुक्ति के बीच रहते हुए भी नीचे नहीं गिरोगे। कर्म फलों से प्राप्त होने वाली भुक्ति भगवान द्वारा प्रदत्त भुक्ति से भिन्न होती है। कभी कभी भक्त परम ऐश्वर्यवान होता है किंतु भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वह ऐसे किसी पद स्वीकार करता है। अतः भक्त भुक्ति से प्रभावित नहीं होता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तजन श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार संसार भर में उपदेश दे रहे हैं। उनकी अनेक कर्मियों से भेंट होती रहती है किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से वे विषय तरंगों से प्रभावित नहीं होते। भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त है, जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य 7.129 में कहा गया है, कबू ना बाधिबे तो तोमार विषय तरंग पुनरपियाई पाबे मोरे संग। ऐसा एकनिष्ठ भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का विश्व भर में उपदेश देता है उसे विषय तरंगे नहीं सताती, उल्टे वह काल क्रम के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में वापस जाता है और इस प्रकार उनसे उसकी शाश्वत संगति बनी रहती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामय्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तो मैं सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ, खास करके राजश्याम प्रभु कि आप आशीर्वाद दो कि मैं जो भी बोलूँ अपने शुद्धिकरण के लिए, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनके गुणगान के लिए। 1972 में श्री प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। वो कुएं का पानी ठंडा था बहुत, तो वो ठंडी पानी से प्रभुपाद नहाए। जैसे भक्तों को पता चला सब भागने लगे, वो स्लीपिंग बैग फेंक के सब भागने लगे और नहाने लगे। तो इस तरह से प्रभुपाद ने अपने जीवन में ये दिखाया है। और एक बार प्रभुपाद जब न्यू वृंदावन लॉस एंजल्स में, ये जो पूरी दुनिया का हेडक्वार्टर बना इस्कॉन का, तो उस वक्त उधर सब सुविधा था एकदम पूरा, प्रभुपाद के प्रचार के लिए, उनके लेखन के लिए, उनको जो भी कुछ मैनेजमेंट करने के लिए पूरी सुविधा थी। लेकिन कुछ तो हो गया उधर, तो प्रभुपाद को ऐसा लगा कि मुझे इधर नहीं रहना चाहिए। तो प्रभुपाद वहाँ से चले आए और वृंदावन में आए। बाद में उनको वृंदावन में आके लैंड मिल गया, कृष्ण बलराम मंदिर भी हो गया। तो बीच में प्रभुपाद पूछते थे उधर, वो लॉस एंजल्स के डीजीस को प्रार्थना करते थे प्रभुपाद कि भगवान को प्रार्थना करते थे, पूछते थे कि वो इतना सारा सुविधा है इधर लॉस एंजल्स में, लेकिन आप मुझसे इसको क्यों दूर लेके जा रहे हैं। ऐसा प्रभुपाद प्रार्थना की प्रभुपाद ने उनको कि क्यों ऐसे दूर लेके जा रहे हैं मुझसे। तो बाद में जब वृंदावन का मंदिर हो गया कुछ साल बाद, तो प्रभुपाद वापस भगवान को बोलने लगे कि अभी मुझे पता चला कि आपने क्यों मुझे वो सुविधा से दूर रखा, क्योंकि आपको मुझे उससे ज़्यादा सुविधा प्रदान करनी थी। तो गिरिराज महाराज बोले ज़्यादा भी नहीं, लेकिन लॉस एंजलिस के जो जिधर सुविधा है उससे तो बहुत अच्छी थी वृंदावन का मंदिर जब हुआ तो सुविधा। तो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि आपको मुझे उससे ज़्यादा सुविधा देनी थी, इसलिए आपने मुझे उससे दूर रखा। तो प्रभुपाद कह रहे थे भगवान कभी भी किसी से कुछ दूर लेके नहीं जाते हैं, भगवान तभी लेके जाते हैं जब उसको और अच्छी चीज़ देनी है। तो इस तरह से प्रभुपाद बताते। अभी इस परपोट में पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा कि ब्रह्मा जी इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रियव्रत महाराज को कि आपने गृहस्थ जीवन स्वीकार करो और उसमें अभी योग प्रभुपाद उसमें बताया कि आप 6 इंद्रिय और मन को क्या करो, आप नियंत्रित करो। तो इधर प्रभुपाद एक श्लोक आता है जो पृथु महाराज के सेक्शन में आता है, जब सनत कुमार सब 4 कुमार उनको मिलने आते हैं, तो उधर भी वो बताते हैं कि किस तरह से भक्त ही केवल ये इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम उदग्रथयन्ति संत तद्वन्न रिक्तमतयो यतो पिरुद्ध स्त्रोतो घनास्तमरणम भज वासुदेवम। तो ज्ञानी योगी ये सब लोग एक्चुअली अपनी हृदय की इंद्र तृप्ति की इच्छा को नियंत्रण करने का प्रयास करते, बहुत प्रयास करते, और ये इच्छा को इस श्लोक में इसमें नदी में उठने वाले तरंग से तुलना की गई है। तो ये तरंगे तो बहुत उठती है, हर क्षण उठती रहती है, उसी तरह से हमारे हृदय में इच्छा भौतिक जगत का भोग घेने की इंद्र तृप्ति की इच्छा उठती रहती है। और ये जो सब जो योगी ज्ञानी और भक्त इनका सब फाइट इसके ही साथ है, इसके ही साथ वो फाइट मारते रहते, लेकिन केवल भक्ति इसको जीत सकता है इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को, केवल भक्त। ज्ञानी योगी नहीं जीत सकते। तो उसके लिए क्यों नहीं जीत सकते, तो इस श्लोक में लिखा है रिक्त मतयो, रिक्त मत है उनमें भगवान की चरणों में कोई भक्ति नहीं है, खाली है वो लोग, अपनी खुद की शक्ति से उस इच्छाओं के साथ लड़ने का प्रयास करते। लेकिन जैसे भक्त के लिए ऐसा नहीं है, भक्त भगवान की सेवा करता है, जैसे ही बताए ना वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्नशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेति गो। जैसे ही आप भक्ति में लग जाएंगे आपको बाय प्रोडक्ट है ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी और योगियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इतना संघर्ष कि प्रभुपाद परोट में लिखते हैं वो पूरी तरह से जीवन भर उलझ जाते हैं उसमें। वो संघर्ष ही करते रहते हैं लेकिन वो कभी जीत नहीं पाते। लेकिन भगवान के भक्त बहुत आसानी से जीत सकते हैं। और प्रभुपाद बोलते जिस जीवन में जितनी देर तक आप कृत्रिम ढंग से ये इच्छाओं को दबाने का प्रयास करेंगे आपका पराभव ही होने वाला है। आप हमेशा डिफीट होंगे। जब तक भगवान की भक्ति भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेते आप ये इच्छाओं को जीत नहीं सकते। और आगे कहते हैं प्रभुपाद के भक्त के लिए उसकी इच्छा वरदान बन जाता है। कैसे? ज्ञानी योगी वो इच्छाओं को नष्ट करने के लिए उसके साथ लड़ने के लिए पूरा उनका संघर्ष उसके साथ चलता है। लेकिन वही इच्छा भक्त भगवान की सेवा करने में लगाता है तो उससे होता क्या, वो इच्छा ही उसके आनंद का सोर्स बन जाती है। वो इच्छा से ही उसको आनंद प्राप्त होने लगता है। तो इसलिए आगे फिर बताते हैं प्रभुपाद वही परपोट में कि एक अच्छा उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने। चार कुमार बोल रहे हैं कि बाबा आप इच्छाओं को लड़ने के बजाय भगवान की सेवा में लग जाओ। इच्छाओं से लड़ना व्यर्थ है, कितना लड़ेंगे आप, उससे अच्छा है भगवान की सेवा में लग जाओ। जैसे भक्ति विद्या पूर्ण महाराज ये श्लोक के ऊपर बोल रहे थे आप खुद के लिए कुकिंग कर रहे हैं ना, आप छोड़ नहीं सकते। आप भगवान के लिए कुकिंग करना चालू करो, खुद के लिए कुकिंग करना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से भगवान की सेवा करना चालू किया तो ये इच्छा ऑटोमेटिक बदल जाएगी। इच्छा इसको उसके ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते। जय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री गौर निताय भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और प्रभुपाद ने उधर एक उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे नदी निरंतर बहती जाती है समुद्र की ओर, निरंतर बहती जाती है तो उसको रोक नहीं पा सकते। लेकिन जब नदी समुद्र में जाती है ना, समुद्र को मिलती है तो उधर जब समुद्र को ज्वारा आता है, ज्वारा समझ में आता है, ज्वारा आता है तो नदी जब आती है तो नदी ऐसा समुद्र के जो लहरें इतने स्पीड से नदी के अंदर घुस जाते हो तो उस टाइम पे समुद्र की जो लहरें है वो नदी के लहरें के ऊपर हावी हो जाती है और नदी में ही बाढ़ हो जाती है, उल्टा नदी में बाढ़ आ जाती है नदी के इसमें। तो इस तरह से प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो नदी के लहरें है अब वो हमारे भौतिक इच्छा की तरह है और जो समंदर के लहरें हैं वो आध्यात्मिक इच्छा की तरह है। अगर हम आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाएंगे, आध्यात्मिक इच्छाओं को, तो उसकी बाढ़ से ये जो भौतिक इच्छा है वो दब जाएगी। तो इसलिए बुद्धिमान भक्त क्या करता है, प्रभुपाद बोल रहे थे, योजना बनाता है भगवान की सेवा करने की। दो ही काम करता है, प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग, बस उसमें ही व्यस्त रहता है वो। तो इस तरह से वो भौतिक इच्छा से आसानी से छूट जाता है। और प्रभुपाद यमुनाचार्य का फेमस उदाहरण देते हैं। यमुनाचार्य बोलते हैं ना कि जब से मैं भगवान की भक्ति में सेवा कर रहा हूँ तब से मेरे हृदय में इतनी इच्छा आ रही है भगवान की सेवा करने की, तो कभी गलती से भोग करने की इच्छा आई तो मैं उसके ऊपर क्या करता हूँ, थूक देता हूँ। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उदाहरण दिया तो इस तरह से। और चित्रकेतु महाराज का भी एक प्रार्थना है, पहला ही प्रार्थना है, उसमें भी चित्रकेतु महाराज बताते अजीत अजीत सममिति भी साधु भी भवान जित आत्म भी भवता विजेतो विजितास्ते पिच भजताम अकाम आत्मनाम या आत्मदोति करुण। इसमें चित्रकेतु महाराज बोलते हैं हे अजय भगवान, यदि आप को कोई जीत नहीं सकता किंतु उन भक्तों के द्वारा अवश्य जीत जाते आप जिन्होंने मन और इंद्रियों के ऊपर संयम किया है और आपको इसलिए वश में रख पाते वो क्योंकि आप उनके भक्त वो भक्तों के ऊपर अकारण कृपालु है और आपसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं चाहते वो भक्त। निसंदेह आप उन्हें अपने आप को प्रदान कर देते हैं, इसलिए अपने भक्तों पर आपका भी पूरा नियंत्रण रहता है। तो ये श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त को सममित कहते, सममति कहते। और सममति के दो अर्थ बताते प्रभुपाद। प्रभुपाद बोलते कि ज्ञानी और योगी जो है वो कृत्रिम रूप से भगवान में एक रूप होने का प्रयास करते हमेशा, लेकिन भक्तों को पता है कि मेरी स्थिति दास की है, ये कृत्रिम रूप से मैं भगवान के साथ एक रूप होने का प्रयास करूंगा तो ये कुछ इच्छा पूरी नहीं होने वाली, तो इसलिए उनको सममिति कहते। और सममिति का और एक अर्थ बताते प्रभुपाद। प्रभुपाद बोलते कि जो भक्त जो है किसी भी स्थिति में भक्ति मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता है, किसी भी मार्ग से, और वो जब सुखी रहता है तभी भगवान की भक्ति करता है, दुखी रहता है तभी भगवान की भक्ति करता है, किसी भी परिस्थिति से उसके भक्ति में रुकावट नहीं आती है, और ये भक्ति पूरी तरह से निष्काम रहती है, वो कुछ आशा नहीं करता, निष्काम अखंडित अहैतुकी अप्रतिहता। जब भक्त इस तरह से सेवा करता है तो उसके भक्ति में कभी भी बाधा नहीं आ सकती। और इस तरह से भक्ति करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है कि भक्त भगवान के ऊपर विजय प्राप्त करता है, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं फरफुट में। और भगवान भी भक्त के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि भक्त विजय प्राप्त करके क्या करता है, भगवान की शरणागति स्वीकार करता है, इसलिए भगवान भी उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको भी प्रभुपाद बोलते हैं, इसको सममिति कहा है। तो अभी आगे का आगे इधर ये तात्पर्य में एक इधर बताया प्रभुपाद ने कि यहां ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को गृहस्थ जीवन लेने के लिए नहीं बोल रहे, वो क्या बोल रहे हैं, क्या आप भगवान के चरण कमलों के दुर्ग के भीतर शरण लेने का उपदेश देते, क्या आप भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने भगवान, तो आप सुखी रहेंगे, आपको कुछ आपको जो डर लग रहा है कि मेरा कैसे होगा, कि मैं इतना तपस्या किया है ये भोग का जीवन लेके मेरे भक्ति का संरक्षण होगा कि नहीं, तो ऐसे सब भागवतम तो पूरा भरा पड़ा है, लेकिन अम्बरीश महाराज की जो कथा है उसमें ऊपरपोट में प्रभुपाद ने बहुत कुछ बताया है, तो उसमें से मैं बताऊंगा कि जैसे इधर संरक्षण बोल रहे हैं, मराठी में तो संरक्षण लिखा है, इधर हाँ इधर रक्षित बोला उधर संरक्षण बोला है, तो संरक्षण भक्तों का संरक्षण के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं अम्बरीश महाराज के कथा में। तो जब भगवान ने अम्बरीश महाराज की इतनी भक्ति देखी तो उन्होंने पहले ही अम्बरीश महाराज को सुदर्शन चक्र दिया था, पहले ही दिया था। तो प्रभुपाद प्रपोट में लिखते कि भक्त को खुद की ज़्यादा चिंता नहीं रहती लेकिन भगवान को चिंता रहती है, इसलिए प्रभुपाद इन्होंने भगवान ने उनको सुदर्शन चक्र दिया था। और उसके आगे का जो श्लोक है उसमें एक श्लोक ऐसा है, प्रागदिष्टम भृत्य रक्षायाम पुरुषेन महात्मना ददाह कृत्यम त्वाम चक्र क्रुद्धाहमिव पावक। जिस प्रकार दावाग्नि एक क्रुद्ध सर्प को तुरंत जला देती है उसी प्रकार पहले से ही आदिष्ट भगवान के सुदर्शन चक्र ने भगवत भक्त की रक्षा करने के लिए उस सृजित कृत्या को जलाकर क्षार कर दिया। तो परपट में प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रागदिष्टम शब्द का अर्थ क्या है, भगवान पहले से ही तैयार थे, भगवान को पता था कि अभी ये दुर्वासा मुनि असुर पैदा करके अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास कर रहा, पहले ही चक्र तैयार रखा था भगवान ने कि ये जैसे निकलेगा तो चक्र आ जाएगा। और उधर प्रभुपाद ने डायरेक्ट जैसे ही निकला उसने मार दिया। तो प्रभुपाद परपोट में कहते हैं जिस क्षण कोई जीव भगवान की भक्ति में आता है उस क्षण से योग क्षेम वहां में हम उसका संरक्षण चालू होता है, फुल बीमा उतराया जाता है उसका उसी क्षण से, कुछ एक मिनट भी दूर नहीं, उसी क्षण से संरक्षण चालू। प्रभुपाद बोलते प्रकोट करते कि कौनते प्रतिजानी नमे वक्षा भक्त प्रणिशति और सर्वधर्मान परिद्यज्य, ये दोनों श्लोक कोट करते। प्रभुपाद बोलते जे जब भी भक्त चालू करता है अपनी भक्ति उसका सुरक्षा चालू हो जाता है, और केवल सुरक्षा नहीं शारीरिक सुरक्षा तो भगवान ने पूरा भागवत में वही है कि भक्तों की कैसी सुरक्षा की है। प्रभुपाद बोलते हैं कि उसको भगवान गाइडेंस देते मार्गदर्शन देते, ऐसा मार्गदर्शन देते हैं कि जिस तरह से वो हर संकट में सुरक्षित रहे और पूरी सुरक्षता के साथ मेरी भक्ति करती रहे, करता रहे। इस तरह से प्रभुपाद बोलते, पूरी सुरक्षा देते हैं। और कितना भी बड़ा संकट आने दो, प्रभुपाद बोलते उसमें इस श्लोक में बताया है, कितना भी संकट यानी एक दावा नहीं कर, अगर कोई सर्प है वो डसने के लिए आ रहा है आपको, लेकिन अगर जंगल की अग्नि के सामने क्या करेगा वो अग्नि को, कुछ नहीं कर सकता, जल के राख हो जाएगा। उसी तरह से भगवान का प्रोटेक्शन वो धरती जंगल की दावाग्नि की तरह है। वो जो सर्प है भगवान के इसके भक्त के शत्रु, वो कोई नहीं कर सकते भक्तों को, वो जल के राख हो जाएंगे। इस तरह से इसे देख सकते हम कि अर्जुन को भी भगवान ने दोनों सुरक्षा दिया, भौतिक भी सुरक्षा दिया और आध्यात्मिक सुरक्षा दिया। मार्गदर्शन तो पूरा भगवद्गीता, अर्जुन को मार्गदर्शन किया है भगवान ने, और हमको भी हमारे जीवन में खुद अनुभव है, कभी संकट आता है, सवाल आता है, तो कभी भी किसी लेक्चर से हमको हमारा जवाब मिल जाता है, कभी पुस्तक खोलते तो उसका जवाब मिल जाता है। तो भगवान हमारा प्रोटेक्शन करती है दोनों तरफ से, अर्जुन का, युधिष्ठिर महाराज है, ध्रुव महाराज को उन्होंने रक्षण किया मार्गदर्शन करके। इस तरह से अभी आगे जो श्लोक है, वो श्लोक में जब अम्बरीश महाराज, ये दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तो ब्रह्मा जी कहते बाबा जब विलय आता है, प्रलय आता है ना, तो केवल दृष्टि से मेरा पूरा लोक नष्ट कर देते भगवान, मैं क्या इसको रोकने वाला हूँ, हम सब दास है भगवान के, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस परपोट में प्रभुपाद मृत्यु, क्या वो श्लोक है, मृत्यु सर्वहरश्याम, इसका अर्थ बताते प्रभुपाद। बोलते कि मृत्यु सर्व हरश्याम मतलब मृत्यु के समय भगवान आपसे सब चीज हरण करते, जितना है आपके पास सब, जितना आपका ज्ञान है, कीर्ति है, संपत्ति है, स्किल है, जो कुछ है सब हरण करते हैं भगवान। तो इसका दूसरा अर्थ क्या है प्रभुपाद बोलते, इसका दूसरा अर्थ है कि आपके पास जो भी है उसको भगवान ने आपको प्रदान किया तो उसके पीछे कोई प्रयोजन है। आपके पास जो भी है, संपत्ति है, आपका ऐश्वर्य है, कुछ स्किल है, जो भी आपके पास है उसके पीछे एक प्रयोजन है, वो हर एक के पीछे कोई प्रयोजन है। तो इसका मतलब है हमको वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। इस तरह से तो इधर ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को समझा रहे। तो देखिए उस दिन गौरांग दर्शन प्रभु आए थे लेक्चर देने के लिए, उन्होंने वो लेक्चर दिया, इधर भागवतम दिया था। तो उन्होंने बताया कि पहले जमाने में वो राजा लोगों को, जो राजपुत्र है, बच्चों को वन में भेजते थे। क्यों भेजते थे वो, क्योंकि और बहुत देर तक, जैसे कि वन में जाओ आप तपश्चर्या करो, तपश्चर्या करो, असुविधा का सामना करो, और असुविधा का सामना करो, मन और इंद्रिय का संयम करो, इसके साथ जियो। तो उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है शुद्धिकरण, आपका शुद्धिकरण होना चाहिए। और जब आप असुविधा में रहेंगे, जब आप असुविधा में रहेंगे तब जाके आपको लोगों की असुविधा समझ में आएंगी और उनकी अच्छी तरह से आप राज कर सकते। आप मन और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करेंगे, मन और नियंत्रण के ऊपर नियंत्रण करेंगे तो क्या है, जब आप महल में रहते हैं पूरी इतना पूरा ऐश्वर्य के साथ रहते हैं, तब आपके आपको क्या नियंत्रण आएगा, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं आपके मन और इंद्रियों को। नहीं तो अगर तपश्चर्या नहीं की, आप असुविधा का सामना नहीं किया, तो राज्य नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे भोग से आप भर जाओगे, आप भय जाएंगे आप इतने सारे भोग से, और असुविधा आपको पता नहीं है तो लोगों के उपका कल्याण नहीं कर सकते आप। तो ये उद्देश्य। और दूसरा कि जब सब राज्य आपका जीवन एकदम 50 की उम्र तक आए तो आपको असुविधा नहीं होगी वानप्रस्थ स्वीकार करने के लिए, क्योंकि बचपन में आपको ट्रेनिंग मिला है, बचपन में आपको ट्रेनिंग मिला है। तो इसलिए ये उद्देश्य था कि आप जंगल में जाओ, मन और इंद्रियों को संयमित करो और उसके साथ असुविधा में रहने की प्रैक्टिस करो, तो आप अच्छी तरह से राज्य कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आप राज्य नहीं कर सकते अच्छी तरह से। और पहले राजाओं को ऐसे लगता था कि मेरा ज्येष्ठ बड़ा पुत्र जाए, और बहुत साल तक, दीर्घकाल तक बोला है, दीर्घकाल तक जंगल में रहना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, प्रचेता 10,000 साल तक गए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो प्रियव्रत महाराज है उनके पास ये सब क्वालिफिकेशन है। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आपको आप अभी नया कहाँ से लाएंगे हम, ये सब आप रेडीमेड है, इधर सब आपने किया है, तो आपको भगवान की आज्ञा माननी चाहिए, आना चाहिए आपको इस तरह से। उसके बाद जब इसमें प्रपरपोट में प्रभुपाद बोलते कि स्वाभाविक स्थिति, इनको बोलते प्रभुपाद बोलते आप आपकी, ब्रह्मा जी भी बोले कि आपके स्वाभाविक स्थिति में आप रहो, मतलब आप दास है भगवान की, तो दास की स्थिति में आप रहो। तो ये भी प्रपट में प्रभुपाद ने बोला है, जो श्लोक है फेमस श्लोक, श्री भगवान वाच अहम भक्त पराधीनो य स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भिर्गस्त हृदयो भक्तर भक्त जनप्रिय। इस तात्पर्य में प्रभुपाद पूछते कि सब लोग भगवान के अंडर सेवा करते, ब्रह्मा जी शिव जी सब, लेकिन भगवान बोल रहे कि मैं मेरे भक्तों के नियंत्रण में रहता हूं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि वो अन्याभिलाषिता शून्य में, उनके मन उनकी इंद्रियां संयमित है, उनको कोई इच्छा नहीं है, भगवान से कुछ भी अपेक्षा नहीं करते, तो इसलिए और उनका केवल एक इच्छा रहता है कि मैं भगवान की कैसी सेवा करूं, भगवान की संतुष्टि यही उनकी इच्छा रहती है, इसलिए भगवान बोलते कि भक्त मेरे ऊपर नियंत्रण करते। उसके आगे है कि परपोट में प्रभुपाद बोलते हैं कि केवल भगवान भक्त के ऊपर ही नहीं दया करते, भक्तों के भक्त के ऊपर भी दया करते, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तर पाए जो केवा। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला हमारी स्थिति है गोपीर भरतुर पद कमल दास दास दासानुदास। उसके आगे बहुत अच्छा बोला है प्रभुपाद ने, प्रभुपाद बोलते ब्रह्मा जी शिव जी नारद मुनि सुखदेव गोस्वामी ये डायरेक्ट डायरेक्ट भक्त है भगवान के, डायरेक्ट भक्त है भगवान के। अगर कोई इन भक्तों का भक्त बनता है, मतलब हमारे षड गोस्वामी, और कोई षड गोस्वामी के का भी भक्त बनता है, तो भक्ति में वो सबसे दृढ़ माना जाता है और सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। तो इस तरह से प्रभुपाद परपोट में लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते ऐसे प्रसाद भगवत प्रसाद हो, मतलब भगवान की आज्ञा से बड़ा भगवान के भक्तों की आज्ञा का पालन करना है। तो इधर भगवान जी खुद आए प्रियव्रत महाराज को बोलने के लिए, भगवान की भी आज्ञा और भक्त की भी आज्ञा है, दोनों की आज्ञा है, तो आपको भगवान की और भक्तों की दोनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इस तरह से प्रभुपाद बोलते। तो दासों का दास, और चैतन्य चरितामृत में भी बहुत अच्छा बताया है, पूरा एक चैप्टर है अद्वैत आचार्य के बारे में बोलते हैं, तो कविराज गोस्वामी ने इतना बढ़िया बताया उसमें कि अद्वैत आचार्य खुद महाविष्णु है, वो खुद महाविष्णु है, उनकी महानता हम व्यक्त नहीं कर सकते उनकी, लेकिन वो खुद को भगवान का दास मानते हैं और उसमें उनको आनंद आता है। केवल अद्वैत आचार्य नहीं, उन्होंने पूरा एकदम पूरी बड़ी लिस्ट है, इतना अच्छा बताया वो कि पूरे अद्वैत आचार्य के बाद उन्होंने कहा है कि नित्यानंद प्रभु वो भी खुद को भगवान का दास बोलते हैं, वो तो बलराम जी, बाद में लक्ष्मी, लक्ष्मी भगवान के चेस्ट के ऊपर रहती है लेकिन हमेशा प्रार्थना करती है कि मुझे आपके चरणों की सेवा मिलती रहे। ब्रह्मा जी शिव जी नारद सनत कुमार सबके सब बोलते कि हमको आपके दास बनना है। श्रीनिवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर वक्रेश्वर बड़े बड़े पंडित है, ये हमारे जैसे पंडित नहीं है, इतना 7 दिन पर प्रिपरेशन करने के बाद बोल सकते, नहीं नहीं वो ऐसे बड़े बड़े पंडित है लेकिन वो बोलते हैं, और वो कृष्णदास देवराज बोलते वो पूरे नशे में रहते, केवल खुद को दास नहीं मानते, सबको पकड़ पकड़ के नचाते और बोलते चैतन्य महाप्रभु के दास बनो, चैतन्य महाप्रभु के दास बनो, इस आवेश में नाचते रहते हो। इसके आगे कहते हैं कि कृष्ण प्रेमेर ये एक अपूर्व प्रभाव गुरु सम लघु के कराए दासे भाव। कृष्ण प्रेम का ऐसा नशा है केवल अपने इक्वल और कनिष्ठ को सेवा करने के लिए आनंद नहीं मिलता है, उनके गुरुजनों को, उनके समवयस्क को भी, और क्या बोले गुरुजन समवयस्क कनिष्ठ सब वो भाव से प्रेरित हो जाते, सभी उसी भाव से। नंद महाराज के बारे में बताएं, नंद महाराज ब्रज में सबसे बड़े व्यक्ति थे जिनके प्रति कृष्ण को आदर था, सबसे बड़े व्यक्ति थे, लेकिन नंद महाराज को भी हृदय में जब तक कृष्ण की सेवा नहीं करते आनंद नहीं आता था उनको। तो नंद महाराज उद्धव को बोलते कि हे उद्धव, आपके तरह आप बोल रहे कि मेरा बेटा भगवान है, ठीक है मेरा बेटा भगवान है, लेकिन मैं यही प्रार्थना करूंगा, मैं मेरा भाव उसको मेरे बेटे जैसा ही रखूंगा मेरा भाव, और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपके बेटे के चरण कमलों में मेरी मति लगी रहे, मेरे जितने सारे भी पुण्य कर्म हो उसका एक ही नतीजा हो कि मैं इसके भक्ति में और दृढ़, इसकी सेवा में और दृढ़ होता जाऊं, और दृढ़ होता जाऊं। तो उनको भगवान के पिता है लेकिन उनकी सेवा में आनंद आता है, उनके दास्यता में आनंद आता है। आगे श्रीदामा, श्रीदामा है वो प्रमुख गोप है लेकिन वो भी उनके चरण दबत है, उनके चरण दबत है, उनको भी दास्यता में आनंद आता है। गोपिया, गोपिया का भी बोला है बाद में, राधा रानी भी वो सबसे बड़ी गोपी है जो भगवान को पूरी तरह से उन्होंने क्या किया, वश में रखा है, लेकिन वो भी चरणों की सेवा कर दिए। इस तरह से द्वारका की रानी रुक्मिणी कहती है कि मुझे जो लक्ष्मी के ये ना चरण, जो भगवान के जो चरण है, जो लक्ष्मी के आराध्य है, उसका आश्रय मुझे प्राप्त हो। कालिंदी कहती है कि मैं एक फर्श साफ करने वाली दासी हूँ कृष्ण की, कि घर की फर्श साफ करने वाली दासी हूँ, हमको अगर क्लीनिंग बोला तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, आश्रम क्लीनिंग में चार लोग थे, अभी गायब हो गए सब। तो ये कौन बोल रहा है? कालिंदी बोल रही है भगवान की पटरानी द्वारका की, कि मैं दासी हूँ। और आगे लक्ष्मणा बोलती है कि मेरे जितनी तपस्या रखी है ना, उसका फल है कि हमको दासी बनने को मिला है। बलराम जी, शेष, ये सब भगवान की दास्यता में आनंद प्राप्त करते सब। सदाशिव तो नाचते है, वस्त्र भी नहीं पहनते, पूरे घर गोल 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 नाचते है और भगवान को प्रार्थना, नाचते नाचते क्या बोलते, भगवान की लीला बोलते रहते, और यही बोलते कि मैं भगवान का दास हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं। इतना ही नहीं, कृष्णदास कविराज बोलते हैं कि जो बलराम जी के बाद जो भी आश्वांश आते हैं भगवान के, उनको वो भी इसी रस में पागल रहते, सब इसी रस में पागल रहते। आगे बोले लक्ष्मण जी और शंकरषण, कारणक सागर माले में रह सोने वाले विष्णु, अद्वैत आचार्य, ये पूरी तरह से धुत बोला एकदम, मत भगवान के दास्य भाव में पूरा नशा आ जाता है इनको, और उनको कुछ समझ में नहीं आता है, इससे बड़ा दुनिया में कोई आनंद नहीं है। इस तरह से ये दास्य भाव, तो प्रभुपाद बोलते हैं, अरे इसमें इनको बोल परपोट में बोल रहे, ब्रह्मा जी आपकी ओरिजिनल स्थिति में रहेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, कुछ भी आने दो। यहाँ तक के कृष्णदास कविराज बोलते हैं कि इतना इसका आनंद है ये दास्य भाव का, के बाद में भगवान को इच्छा हुई है, क्या आनंद है, मुझे भी चाहिए, लेकिन जब तक भक्त नहीं बनूंगा तब तक ये आनंद नहीं आ सकता, इसलिए भगवान भी खुद के ही भक्त बन के आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और आके सेवा की उन्होंने भक्तों की। इस तरह से ये दास जब तक हम अपनी स्थिति में रहेंगे सुखी नहीं रहेंगे। जब अर्जुन को ये 4.34 के बाद 35 नंबर का श्लोक है, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते कि जब अर्जुन भूल गया कि मेरा और उसके रिश्तेदारों का क्या कनेक्शन है, इसलिए मोहित हो गया। अर्जुन से पहले भगवान के साथ उसके रिश्तेदारों का पहला कनेक्शन भगवान के साथ है, दास का, और वो करोड़ों करोड़ों अनलिमिटेड काल से, लेकिन अर्जुन को केवल यही दिख रहा है, और ये मेरे मामा है, चाचा है, काका, यही दिख रहा है, क्योंकि प्रभुपाद बोल रहे वो कनेक्शन भूल गया, उधर दास है मेरे, उसके ना मामा से पहले मेरा दास है वो, इसलिए मोहित हो गए। तो मेरा संबंध बहुत पुराना है, आपका अभी का है बाबा। तो आप भूल जाएंगे, आप दास है तो आपको कष्ट करना पड़ेगा। इस तरह से प्रभुपाद ने एक लाइन में बोले, अर्जुन भूल गया वो संबंध इस तरह से। तो इस तरह से अभी आगे के श्लोक में इधर बताया है ये श्लोक, ये बहुत अच्छा श्लोक है, परपोट में बताया है प्रभुपाद ने, ये श्लोक है, इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ूंगा मैं, श्लोक नहीं पढ़ूंगा, ये 9.4.65 नंबर का श्लोक है, उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि चूंकि शुद्ध भक्त इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नी, बच्चों, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी त्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं, तो ऐसे भक्त को मैं कैसे छोड़ूंगा। तो इसके परपोर्ट में प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप आपके घर वालों में पत्नी बच्चे जो भी है उसमें आसक्त रहेंगे तो आप कभी शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे और कभी भी आपको भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। लेकिन प्रभुपाद आके कहते कभी कभी शुद्ध भक्त ही घर में आसक्त रहता है, शुद्ध भक्त है अपने पत्नी बच्चों में आसक्त रहता है। अगर उसका उसके साथ इच्छा हो गया कि मुझे भगवान की शक्ति सेवा करनी है तो प्रभुपाद कहते कि फिर भगवान उसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट करते, स्पेशल अरेंजमेंट करते, ऐसा करते हैं कि वो अपनी आसक्ति से छूट जाए, अपनी आसक्ति से वो छूट जाए। और इस तरह उसको विशेष आयोजन करके वो घर वालों से आसक्ति उसको काट देते और उसको भगवत धाम वापस बुला लेते। तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ये प्रेवर महाराज को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अगर आपने गृहस्थ आश्रम भी स्वीकार, आप आसक्त भी हो गए तो भगवान ऐसे अरेंजमेंट करेंगे आप आसक्ति से निकल जाओ। और किया भी भगवान ने आगे जाके, वो भूल गए थे, भगवान ने उनको याद दिलाया कि अरे आप भक्त है। बाद में प्रियवर महाराज गए, ऐसे मैं महाराज का लेक्चर सुन रहा था, राधानंद महाराज का, इसके ऊपर ही दे रहे थे महाराज लेक्चर। महाराज बोले मैं जब हिमालय में घूमता था इतनी किताबें मेरे पास थी, सैक लगा के, आपने सुना होगा वो सैक में रखे थे प्रभु महाराज ने, और इतना तकलीफ होता था उसका, सोचते थे महाराज अरे इसको छोड़ दो, एक कब पढ़ूंगा। बाद में किताब लेते थे, नहीं नहीं ये कब मिलेगा मुझे पढ़ने के लिए, रहने तो बहुत बहुत ये बहुत महत्वपूर्ण है, रख दो। ऐसा कर करके पूरी बैग में ऐसे ही रखता था, कभी फेंकता नहीं था। तो एक दिन सो गया तो बैग ही पूरी चोरी हो गई, पूरी बैग ही चोरी करके लेकर गई। तो सुबह दूसरे दिन उठ गया मैं तो अरे देखा बैग नहीं, बहुत महाराज बोले मुझे टेंशन आ गया, अरे मेरा इतना सारा इतना क्या बोलते उसको ठेवा, मराठी में बोलते ठेवा, मेरा इतना प्रशिय क्या बोलते उसको, हाँ प्रेशियस मौल्यवान, सब गायब हो गया, क्या करूँ मैं, परेशान हो गए महाराज। लेकिन बाद में बोला ठीक है मैं नहा के आता हूँ। तो नहाने के लिए जा रहे थे, उठ गए बोला अरे कितना हल्का लग रहा है। प्रभुपाद बोले अरे इतना इतने दिन से बहुत तकलीफ हो रहा, इतना हल्का लग रहा है, ऐसा लग रहा था मैं मुक्त हो गया। तो इस तरह से भगवान बराबर अरेंजमेंट करके आपकी आसक्ति निकाल लेते, यही बोल रहे इधर ब्रह्मा जी। अरे ये श्लोक भगवान इनको बोल रहे दुर्वासा मुनि को, मेरे भक्त अगर आसक्त भी हो गए ना तो उनकी आसक्ति में निकाल लेता हूं। और लास्ट और एक बहुत अच्छी बात बताइए कि प्रभुपाद महाराज ये बोलते हैं भागवतम में कहा है वो श्लोक है, मैं श्लोक नहीं इधर टाइप किया, 9.5.25 श्लोक है उसमें अम्बरीश महाराज के में, इस प्रकार अपनी भक्ति के कारण नाना प्रकार के दिव्य गुणों से अम्बरीश महाराज क्या हो गए, युक्त हो गए। तो उससे क्या हो गया, परमात्मा तथा भगवान से भली भांति अवगत हो गए और सम्यक रीति से वो भक्ति करने लगे। अपने भक्ति के कारण उन्हें इस भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक भी नरक के तुल्य लगने लगा। तो इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छे बताते, प्रभुपाद बोलते भगवान का भक्त सर्व सर्व सब पता रहता है उसको। देखिए वो प्रभुपाद बोलते कि योग योग आपको परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए योग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवद गीता में क्या कहा है, सबसे बड़ा योगी मेरा भक्त है, योगी नाम अपि सर्वेशम। ज्ञान के बारे में कहेंगे तो सबसे बड़ा मेरा ही भक्त है, क्या श्लोक, हाँ बहुनाम जन्म नामंती ज्ञान मानवा प्रपद्य में प्रपद्य थे वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। इस तरह से भगवान के पास ब्रह्म साक्षात्कार भी है, भक्त के पास परमात्मा साक्षात्कार भी, दोनों है। तो भक्ति करके अम्बरीश महाराज सब जान गए, यहां तक कि ब्रह्म परमात्मा भगवान ये तो जान गए, भगवान अम्बरीश महाराज माया क्या जान गए, आध्यात्मिक जगत क्या जान गए, भौतिक जगत क्या जान गए, यहां तक के भगवान के सृष्टि में हर जगह क्या हो रहा है ये भी जान गए, हर सृष्टि में। और उधर प्रभुपाद कहते यस्मिन विज्ञाते सर्वमेवम विज्ञातम भवति, जब भक्त भगवान की भक्ति करता है तो वह सृष्टि में पूरी सृष्टि से अवगत हो जाता है, वो पूरी सृष्टि से अवगत हो जाता है। इसका परिणाम ये हो जाता है वो ये इस भौतिक जगत की किसी भी कोई भी आसक्ति उसको नरक के समान लगती है, पूरा नरक ही लगता है उसको। और आगे प्रभुपाद बोलते हैं वो श्लोक स्वर्ग वो स्वर्ग और नरक सेम है, हाँ, दो श्लोक प्रभुपाद कोट करते, एक तो नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपितुल्यात दर्शनात्, और वो कैवल्यम नरकाय त्रिदशा आकाश पुष्पा है थे। ये श्लोक ये दोनों कोट करके बोलते हैं कि भक्त को सभी का सब नरक के सामान दिखने लगता है। और बाद में आगे बहुत अच्छा बताया, वो एकदम शक्ति देने वाला है। अम्बरीश महाराज पूरी तरह से पूरी इंद्रिया भगवान के भक्ति में लगाई थी, वो मुक्त ही थे, मुक्त ही थे, क्या रहने का मुक्त, मुक्ति के लिए क्या रहेगा, मुक्त से भी बड़े हो गए थे, भगवान के भक्त बन गए थे, वो भी शुद्ध भक्त, फिर भी उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया, फिर भी उन्होंने वहां से, तो वानप्रस्थ आश्रम क्यों स्वीकार किया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि समझो किसके पास बहुत पैसा है, पूरा घर भरा है, पीछे पलंग भरा है, कपाट भरा है, पूरा बहुत पैसा है उसके पास, कितना कल्पना करेंगे। अम्बरीश महाराज पूरे इसके सम्राट थे, तो अभी हम वो मेंढक के जैसा हमारा स्थिति है, वो मेंढक रहता है ना कुएं में, उसको सागर नहीं पता चलेगा, प्रभुपाद का उदाहरण है। उसी तरह से अम्बरीश महाराज की संपत्ति सुख सुविधा उसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। तो ऐसा भी कोई आमिर व्यक्ति है, लेकिन वो क्या करता है, फिर भी अपना बिजनेस चालू रखता है, फिर भी बिजनेस, और पैसा आने दो, और पैसा आने दो, और पैसा आने दो, अरे रखेगा किधर, और एक जगह बांध के उधर रखूंगा। तो इस तरह से वो पूरा एकदम लालायित रहता है, पैसा आने दो आने दो, अरे क्या करेगा, आने दो। तो उसी तरह से भक्त भी ऐसा रहता है, वो जितना भक्ति करता है करने और भक्ति करनी, और भक्ति करनी मुझे, और भक्ति करनी, और ऐसा सेम स्थिति रहता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते सेम स्थिति रहती है। और इसी स्थिति से जब ये जो भगवान की जितनी अधिक सेवा करता है वो उसकी अधिक सेवा करने की इच्छा होती है। और इसी जिस तरह से एक व्यापारी धन धान्य से संपन्न होते हुए भी अधिक धन कमाना चाहता है, अधिक धन कमाना चाहता है, उसी मूड में ये अम्बरीश महाराज, उनके पास इतनी सारी शुद्ध भक्त थे, फिर भी उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया। तो प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति में अधिकाधिक लगे रहने की यह प्रवृत्ति मनुष्य को महान पद पर लेके जाती है। और आप देखते हैं कि अम्बरीश महाराज इतने महान है, तो यह सब सुनने के बाद प्रियव्रत महाराज को बोलते हैं, अरे आपको भक्ति ही भक्ति मिलेगी, अम्बरीश महाराज का किधर नुकसान हो गया है, अम्बरीश महाराज ग्रस्त थे फिर भी इतने शुद्ध भक्त थे, और सभी जितने लाभ है उनको सभी प्राप्त हो गए, तो आपको कुछ लॉस नहीं है उसमें। अभी लास्ट में मैं एक दो मिनट में खत्म करता हूँ, क्योंकि लास्ट में प्रभुपाद ने पूरा टर्न लिया है, डायरेक्ट प्रचारों के लिए बोले कि जो भी चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करता है उसको विषय तरंग तकलीफ नहीं देती है, विषय तरंग। मैं ये श्लोक के ऊपर गिरिराज महाराज का श्लोक लेक्चर सुन रहा था, उसमें उन्होंने खुद का उदाहरण दिया है, उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया, इनडायरेक्ट बताया गिरिराज महाराज ने, कि जब जूह में वो झगड़ा चल रहा था जूह के मंदिर के लिए, तो एक दिन वो नायर आ गए मंदिर में, तब कॉम्प्रोमाइज कुछ चल रहा होगा लीगली, तो उनको कोर्ट में जाना था गिरिराज महाराज, वो नायर उनके साथ एक स्त्री थी और ड्राइवर। तो अभी भक्तों के पास तो कुछ कार वीर था नहीं उनके पास, तो उन्होंने एक कार लाया था, तो गिरिराज महाराज बोले कि मैं उन्होंने क्या किया था, एक साइड में वो नायर बैठा, एक साइड में कार के पीछे की सीट में, और एक साइड में वो माताजी बैठी, और बीच में रखा था जगह। तो गिरिराज महाराज बोले, अरे मैं तो ब्रह्मचारी, वो बीच में कैसे बैठ सकता हूँ, लेकिन उधर बहुत इमरजेंसी था, बोले अभी क्या करूँ, इतना बड़ा संकट भी है, हम सबको पता है वो कितना क्रिटिकल था। तो गिरिराज महाराज बोले, मैं बैठ गया उधर, बैठने के बाद हुआ क्या, उस स्त्री का चरित्र अच्छा नहीं था, उस स्त्री वो गिरिराज महाराज को स्पर्श करने लगे। तो गिरिराज महाराज बोले, मैं 24 साल का था और मेरी इंद्रिया तो एकदम वाइल्ड बन गई, मेरा मन बोल रहा था जस्ट डू इट। तो गिरिराज महाराज, ये मन बोल रहा था उनका, लेकिन बोल रहे थे, मैं बाद में सोचने लगा, अगर ये स्त्री पर अगर वेश्या है, क्योंकि ये आदमी डेंजर है, अगर वेश्या होगी तो मैं कुछ करूँगा तो पूरी मेरी नहीं प्रभुपाद की पदना में होगी, प्रभुपाद का पूरा मिशन डैमेज हो जाएगा। तो प्रभुपाद गिरिराज महाराज बोले, उस वक्त मुझे साक्षात्कार हो गया, पता चल गया कि मैं प्रभुपाद से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं प्रभुपाद के साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सा प्रभुपाद के साथ। और उस प्रसंग से वो एकदम सही सलामत छूट गए गिरिराज महाराज। उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया वो लेक्चर में लास्ट में, लेकिन ये इससे रिलेटेड है कि जब कोई भगवान का प्रचार करता है तो वो विषय तरंग में बह नहीं जाता, भगवान उसकी सुरक्षा करते जरूर करते। हरे कृष्णा। धनतेरस श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।